اس پروگرام کے اخراجات جوائس مر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اس ہفتے میرے پاس 3 پیغامات ہیں، آج رات کا، کل صبح کا اور کل دوپہر کا، اور میں آپ سے خوشی اور لطف کے متعلق بات کروں گی، لیکن خوشی سے بڑھ کر میں آپ لوگوں سے آج لطف کے بارے میں بات کروں گی، اور نہ صرف خریداری کا، چھٹی کا اور پارٹیوں کا لطف، یا زندگی کے ان چند دنوں کا لطف نہیں جن میں آپ کو کوئی بڑی خوشی ملے، بلکہ زندگی کا لطف کیسے اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے ہماری زندگی میں چند ہی خاص دن ہوتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اس بلندی پر نہیں رہتے یا رہتے ہیں۔ زندگی کا بہت سارا وقت عام سا ہوتا ہے، رات کو سونا، صبح اٹھنا، کام پر جانا، گھر آنا، برتن دھونا، گاڑی کا آئل بدلنا، گھاس کاٹنا، گروسری سٹور جانا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، پھر سب کو کھاتے ہوئے دیکھنا، پھر صفائی کرنا، پھر اگلے دن کے کام کے لیے اٹھنا، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کے فضل سے ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنے روز مرہ کے تمام تر کاموں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ کیا آپ سمجھے؟ اگر میں یہاں آ کر پوچھتی کہ کتنے لوگوں کو رش میں گاڑی چلا کر کام پر جانا پسند ہے، کتنے لوگوں کو کپڑے دھونا اچھا لگتا ہے، کتنے لوگوں کو گھر کی صفائی سے دلچسپی ہے، خدا آپ دونوں کو برکت دے جنہیں صفائی کرنا پسند ہے، کتنوں کو گروسری سٹور جا کر خریداری کرنا پسند ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ باتیں بتاتی ہوں، جیسے کہ میں صبح اٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں، سو جب میں اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے میرے ذہن میں سب کو گڈ مارننگ کہنے کا خیال نہیں آتا۔ میں سچ کہوں تو سب سے پہلے میں سوچتی ہوں، میرے خدا، میں اٹھنا نہیں چاہتی، مجھے نہیں اٹھنا، مجھے نہیں اٹھنا، لیکن خدا مجھے کچھ چیزیں دکھاتا ہے جو میں اس ہفتے آپ کو بتاؤں گی، جن سے میرے خیال میں آپ کی زندگی میں بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ میں آج سے کچھ ہفتے پہلے ایک اسٹور میں تھی، اور وہ ایک کپڑوں کی دکان تھی، اور وہ اس وقت میرے پیسوں میں سے کٹوتی کر رہے تھے، اور کچھ خواتین یہاں پیچھے کر کے کھڑی تھیں، اور وہ ذرا عمر رسیدہ خواتین تھیں، لیکن وہ چونکہ میری ہی عمر کی تھیں تو میں یہ نہیں کہوں گی، سو کہہ لیجئے وہ عمر رسیدہ لگتی تھیں اور میں نہیں۔ یہ تو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ میں اس کے لیے بہت محنت کرتی ہوں۔ اور ان میں سے ایک نے دوسری سے کہا، تم کیسی ہو؟ اس نے کہا، تمہیں تو پتا ہے، بس گزر رہی ہے۔ پہلی نے دوسری سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم کیسی ہو، اور اس نے کہا، میری بھی یوں ہی بس گزر رہی ہے۔ اور میں نے سوچا یہ واقعی بڑے دکھ کی بات ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی یہی کہانی ہے، بس چل رہا ہے، گزر رہی ہے، اور خدا کے پاس ہمارے لیے اس سے کئی گنا بڑھ کر منصوبہ ہے۔ خدا میں مشکل سے پار ہونے والا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ یہوہ ایل شادائی ہے، یعنی کہ وہ ضرورت سے بڑھ کر ہمیں دینے والا ہے، خدا ہے، بس ضرورت پوری کرنے یا مشکل سے پوری کرنے والا نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر دینے والا۔ میں یہاں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں بیٹھے آپ میں سے ہر ایک کے پاس خوشی اور شادمانی ہے۔ اگر آپ کے پاس یسوع ہے تو آپ کے پاس خوشی ہے، آپ کے اندر، آپ کے روح میں، لیکن شیطان اسے روکنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے کہ یہ باہر نہ آئے یا ہم اسے محسوس نہ کریں، کیونکہ خداوند کی خوشی آپ کی طاقت ہے۔ میرے خیال سے خوشی بہت طاقتور چیز ہے، میرا ایمان ہے کہ خوشی شفا ہے، मेरे ख्याल से वो लोग जो सेहतमंद हैं सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। आमीन। सो मुझे लगता है कि हमें जहां तक भी हो सके खुश रहना चाहिए, और खुशी हंसी मजाक से लेकर पुरसुकून दिल तक कुछ भी हो सकती है। सो खुश रहने का मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन हंसते और खिलखिलाते रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका दिल आपकी जिंदगी के लिए पुरसुकून है। अब मुख्तलिफ लोगों की शख्सियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। मेरी दो बेटियां हैं और मेरी एक बेटी बड़ी मजबूत है। मेरे पास उसके लिए मखसूस अल्फाज नहीं है, लेकिन जब मैंने शख्सियत का मुताला किया तो ये जाना कि उसकी शख्सियत बेहद मुस्बत है। वो सुबह जल्दी उठने वालों में से है। सुबह बखैर, आप सब कैसे हैं? और वो छोटी छोटी सादा तरीन बातों में खुशी ढूंढ लेती है, छोटी छोटी बातों से भी। और मैं बता सकती हूँ कि वजह यह नहीं कि वो बाकियों से ज्यादा रूहानी है। हाँ, वो रूहानी है और खुदा से प्यार करती है, खुदा का कलाम सुनाती है, लेकिन उसमें शख्सियत का बहुत अमल दखल है। सो हमें जानना है कि हम सबकी शख्सियत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उसने उस दिन मुझे कॉल की, वो मेरे घर आई थी, और बाद में उसने कॉल की, उसने कहा कि आपके घर से आने के बाद मैं कुछ और क्रिसमस लाइट्स खरीदने बाजार गई थी, और उसने बताया कि वो इस कदर खुश थी कि उसका सांस फूलने लगा। अब आप जानते कि मुझे भी क्रिसमस का बहुत शौक है, लाइट्स मुझे भी पसंद है, लेकिन उससे मेरा सांस फूलना भी बाकी है। ये मेरी शख्सियत का पहलू नहीं। आमीन। सो जब मैं जिंदगी की हर बात से लुत्फ उठाने की बात कर रही हूं, तो मेरा मतलब ये नहीं कि लाजमन आपको उसके जैसा या किसी और के जैसा बनने की जरूरत है। आप में से कितने लोग किसी शख्स को जानते हैं जो ऐसा ही है कि हर बात पर खुशी से खिलखिला उठे? अच्छा बताइए, सच्चाई से आप सब लोग मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या इसको कभी कभी देखकर आपको गुस्सा आ जाता है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ओहो छोड़ो भी, क्रिसमस लाइट से किसी का सांस नहीं फूलता, लेकिन वो ऐसी है। लुत्फ, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूं। अपने बच्चों को खुश होता देखकर आपको खुशी होती है, या फिर उन्हें गमगीन और दुखी और रोता और शिकायत करता हुआ और डरता और खौफ खाता हुआ और फिक्र या परेशानी से भरा हुआ देखकर खुशी मिलती है? अगर हम इंसान होते हुए अपने बच्चों के लिए ऐसा महसूस करते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि खुदा कैसा महसूस करता है? और एक मसला लोगों का ये भी है, सब लोगों का नहीं लेकिन कुछ लोगों का, मेरा भी, ये जानते ही नहीं कि खुदा किसके हक में है कि हम अपनी जिंदगियों का लुत्फ उठाएं। आप जानते हैं मैंने अपना बचपन खो दिया था, मुझे बचपन ही से उसका लुत्फ उठाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ दे हालात में रही और मेरे घर कोई खुशी नहीं थी। और मुझे याद है कि हंसी खेल की वजह से मैं खुद को मुसीबत में अक्सर ही डाल लिया करती थी। ये सब शोर शराबा बंद करो, मेरे डैड कहा करते थे, और मुझे लगता था काम करना बेहतर है कि इससे लोग खुश होते हैं। सो मुझे लगता था काम करना लुत्फ उठाने से बहुत ज्यादा बेहतर है। सो जब तक मैं तकरीबन 50 की नहीं हुई, जब कभी मुझे लुत्फ का एहसास होता, उसके फौरन बाद मुझे नदामत होने लगती, क्योंकि मैं सोचती जरूर मुझे उस वक्त कोई ना कोई काम करना चाहिए। अब अगर मैं सही हूं तो इस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग हैं, और वैसे मैं सही हूं, क्या कोई इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा है? शायद ऐसे बहुत सारे हैं कि अगर मैं ये बात आपसे ना करूं तो आप यहां बैठकर इस पूरी कॉन्फ्रेंस का भी लुत्फ नहीं उठाएंगे, क्योंकि शायद आप उन तमाम चीजों के बारे में सोच रहे हो जो आपको घर पर रहकर करनी है, और वो आपके इंतजार में पड़ी है और आपको वापस जाकर करनी है। आप इस दुख में हैं तो आप हाथ उठा सकते हैं। देखें कितने सारे लोग हैं, ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है? मैं आपको बताना चाहती हूं, जो बात मैंने जानी कि कचरा वहां कल फिर होगा। अब मेरी सोच ये नहीं कि वो हमेशा पड़ा ही रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप काम से कभी छुट्टी नहीं ले सकते। दर हकीकत आप ज्यादा बेहतर और बाकमाल तौर पर काम कर सकेंगे, आप उसमें वक्फा लेकर वो करें जिसका आपको लुत्फ आता है। अब आखिरकार मैं इस नुक्ते तक पहुंची हूं कि मैं सारे दिन के अंदर 5 मिनट की मुख्तसर सी छुट्टी ले लेती हूं, वरना मैं एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे काम पर छलांग लगाया करती थी। और अब ऐसा होता है कि अगर मैं वर्जिश कर रही हूं, मैं सोमवार, बुध और जुम्मे को अपने ट्रेनर के साथ वर्जिश करती हूं, और वर्जिश के बाद मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूं, और मेरा अगला काम ये होता है कि मैं साफ सुथरी हो जाऊं, सो मैं सीधा जाकर नहाती और बाल संवारती और तैयार होती हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब मैं अपने सोफे पर जाकर 5 से 10 मिनट आराम करती हूं और फिर जाकर अगला काम करती हूं। और आप हैरान होंगे कि 5 मिनट की वो मुख्तसर सी छुट्टी किस तरह से आपको बहाल करती है और ताजगी देती है और पूरे दिन का लुत्फ उठाने में आपकी मदद करती है। अगर चाह ये सारी बातें ज्यादातर दुनिया की चीजों से ही मुतालिक हैं। अब हम 4 हवालाजात को देखेंगे। मैं चाहती हूं कि हम जरा संजीदगी से उन सब पर गौर करें, क्योंकि जब खुदा ने मुझे सिखाना शुरू किया कि वो चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाऊं, कि मैं सिर्फ काम 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 और इमारत पर इमारत खड़ी करने के लिए नहीं बनाई गई, तो इन्हीं हवालाजात से खुदा ने मेरी रहनुमाई की जिनके वसीला मेरी आंखें खुली। यूहन्ना 10:10 और दरअसल मेरे लिए ये बड़ा खास है क्योंकि हमारे टीवी प्रोग्राम का नाम रोजमर्रा जिंदगी का लुत्फ उठाना है, और उसकी वजह बस यही है कि मैंने इस बात को बहुत मुश्किल से सीखा। और आप में से कुछ के लिए ये अहमकाना सी बात हो सकती है, लेकिन कितने लोगों के लिए ये बात हरगिज अहमकाना नहीं है, और आप इस बात को बखूबी समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। ठीक है, बहुत से लोग हैं, शुक्र है कि हमारे पास सही पैगाम है। यूहन्ना 10:10, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, लेकिन मैं इसलिए आया। कितनों को यीशु के आने की खुशी है? मुझे ये सारी बात बहुत कमाल की लगती है। ये वो है जो शैतान करने के लिए आया, लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए, ना सिर्फ पाए बल्कि इसका लुत्फ उठाएं, और कसरत से पाए कि प्याला लबरेज हो। सब कहीं मैं अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाऊंगी। देखिए, हम एक सादा सी जिंदगी जीते हैं, लेकिन खुदा उसमें अपनी कुदरत को जाहिर करता है। आप एक आम जिंदगी से भी जिसमें मुश्किलात परेशानियां हो लुत्फ उठा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? आज शाम हम नुक्ता नजर के मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि जिंदगी का ज्यादातर इनेसार इस पर है कि हम उसे किस तरह देखते हैं, और ये फैसला हमें करना है। आमीन। अब आइए इस बात पर गौर करें, कसरत प्याले का लबरेज होना ये नहीं कि बस मुश्किल से गुजारा होना कि ठीक है बस गुजर रही है, बल्कि अपने लिए ढेरों खुशियां और कुछ दूसरों पर निछावर करने के लिए भी कि जो आपके पास है वो भी जरा उसके भूखे और प्यासे हों। यीशु लोगों को सिखाता है कि उसमें कायम रहे। यूहन्ना 15:5 उसमें कायम रहने से मुतालिक है। अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम मुझ में कायम रहो तो बहुत सा फल लाओगे। और इसी तरह से 10 मजीद आयात हैं उसमें कायम रहने के मुतालिक। मेरी मोहब्बत में कायम रहो। कायम रहने का मतलब है जीना, जिंदगी गुजारना या सुकूनत करना। यीशु में कायम रहना, सुकूनत करना। और फिर 11:11 में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें कही। ये सब कायम रहने से मुतालिक है। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। सो मुझे नहीं लगता हम कभी खुश हो सकते हैं जब तक हम खुदा में सुकूनत करना ना चाहें। आप बैक वक्त परेशान और फिक्रमंद रहते हुए जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा सकते। आमीन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर वक्त भागते रहें, थकन से चूर रहें और अपनी जिंदगी का लुत्फ भी उठाएं। हमें अपनी जिंदगी में कुछ तवाजुन पैदा करना है और इसमें लुत्फ बहुत अहम हिस्सा है जो हमें बहाल करता है और जिंदगी के मुश्किल औकात से गुजरने में हमारी मदद करता है। एम्प्लीफाइड तर्जुमा है, मैंने तुमसे ये बातें कही ताकि मेरी खुशी और शादमानी तुम में कायम रहे और तुम्हारी खुशी और मुसर्रत मुकम्मल और पूरी और लबरेज हो। और फिर यूहन्ना 16:24 में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। अब देखें, एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी मुकम्मल हो जाए। और मुझे लगता है हम बहुत मांगते हैं लेकिन हम जरा देर ठहर कर उसे पाते नहीं। शुक्रिया। ठीक है, जरा सोचें, मैं चाहती हूँ आप इस पर गौर करें। बात यह है कि शैतान को इस बात से बड़ी तकलीफ होती है कि जब आप किसी भी सूरत हाल में खुश रहना सीख लेते हैं तो आपको हर रोज काम पर जाने के खौफ में मुब्तिला होने की जरूरत नहीं, आपको बर्तन धोने या कपड़े धोने के खौफ में मुब्तिला होने या ग्रोसरी स्टोर से डरने की जरूरत नहीं। आप दरअसल इन सब से लुत्फंदोज हो सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। जानते हैं मैंने इस बात को बहुत मुश्किल से रोका हुआ है लेकिन मैं आपको इंतजार करवाऊंगी। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को पाना नहीं आता। क्या आपको इस बात से उलझन नहीं होती जब आप किसी को कुछ देना चाह रहे हो और वो नहीं 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 कहते रहे? मैं तो कहती हूँ बराए मेहरबानी ले लीजिए। और बहुत मर्तबा हम नहीं जानते कि खुदा से कैसे पाएं। देखें, आप में से कुछ को आज शाम खुदा के रहम को पाने की जरूरत है। जी हाँ, ये मुफ्त इनाम है और आप आज भी साल पहले की गई गलती के लिए खुद पर बरहम हैं और आपने खुदा से माफी भी मांगी और ईमान भी रखा कि उसने आपको माफ कर दिया, तो भी आपने अब तक खुद को माफ नहीं किया क्योंकि आपने खुदा के रहम को नहीं पाया। रहम यह है कि खुदा आपसे तब भी भलाई करता है जब आप हकदार नहीं। जब आप समझ जाते हैं कि रहम क्या है तो आप खुशी को पाते हैं। और यूहन्ना 17:13 में मैं सिर्फ एम्प्लीफाइड से पढ़ूंगी। अच्छा, मैं आपके लिए NIV और एम्प्लीफाइड दोनों से पढ़ देती हूँ। वो कहता है, लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। अब जरा एम्प्लीफाइड तर्जुमा देखते हैं। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी और भरपूर और कामिल तौर पर हासिल हो, ताकि उन्हें क्या? ओ मेरे खुदा, मतलब कि यहाँ सिर्फ ईमान की बात नहीं बल्कि वो दरअसल चाहता है कि हम उसकी खुशी का तजर्बा करें और जिंदगी के लुत्फ का तजर्बा करें। मेरा सब कुछ ईमान ही है, ईमान से भरोसा रखना, ईमान से इंतजार करना। लेकिन ऐसा वक्त भी आता है जब मुझे इसे पाने की जरूरत होती है और इसे पाने का तजुर्बा करना होता है और इस काबिल होना पड़ता है कि किसी और को भी इस हकीकत से आगाह कर सकूं कि इंतजार का फल मिलता है। जी हाँ, मेरी खुशी उनमें पूरी हो और मेरी शादमानी उनकी रूह में कामिल ठहरे। क्या लगता है यीशु किस कदर शादमान था? वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मानिंद शादमान हो, मैं चाहता हूं कि जो खुशी मुझ में है तुम में भी हो और तुम जिंदगी से वैसे ही लुत्फंदोज हो जिस तरह मैं होता हूं। मुझे आपका नहीं पता लेकिन मेरे लिए ये अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि खुशी के बारे में तालीम बहुत अहम है। हमें ईमान रखना है कि खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी से लुत्फ उठाएं। सब कहें, खुदा चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी से लुत्फ उठाऊं। लेकिन जाहिर है हम छुट्टी लेकर नहीं बैठ सकते आप में से कुछ तो बहरहाल उसका लुत्फ नहीं उठाते, क्योंकि आप अपनी छुट्टी को अपने सारे मसाइल पर गौर व फिक्र करने में जाया कर देते हैं। अब हमें अपनी जिंदगी में खास चीजों की जरूरत है, और कभी कभार आप इस मोड़ पर आ जाते हैं जहां आपको लगता है कि खुदा मुझे वाकई तेरी जरूरत है कि मेरे लिए कुछ करे, मुझे कुछ बताए, और मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं या क्या करते हैं। हम सब कभी कभी इस मोड़ पर आ जाते हैं। मैं ऐसे वक्त से गुजरी हूं कि जब मैंने कहा ठीक है खुदा, मुझे ईमान रखते हुए बहुत बहुत अरसा बीत गया है, मैं चाहती हूं कि अब तू मेरे लिए मेरी जिंदगी में कुछ खास करे, और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप खुदा से कुछ खास करने के लिए कहते हैं, जब आपको लगता है कि आप वाकई इस मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको इसकी जरूरत है। मैंने चंद दिन इसके लिए दुआ की, और यकीनन तब से अब तक 3 से 4 ऐसी बातें हुई हैं। शायद आपके लिए ये कुछ इतना ज्यादा ना हो, लेकिन मैं जानती थी कि ये खुदा की तरफ से मेरे लिए एक इशारा है। क्या ऐसे छोटे छोटे इशारे आपको पसंद नहीं कि मैं यहां हूं? मैंने सुना मुझे तेरी फिक्र है, और अक्सर हम क्या करते हैं, हम लोगों पर बरहम हो जाते हैं क्योंकि वो हमें हमारी मनचाही चीज नहीं दे रहे होते, बजाय इसके कि खुदा के पास जाकर उससे अपनी मनचाही चीज की दरख्वास्त करें। जी सुने, हाँ मुझे जेफ पर इसलिए गुस्सा है कि उन्होंने अभी तक ये नहीं किया वो नहीं किया। मैंने सालों तक यही किया, और मैं आपको बता सकती हूँ कि ये फजूल है। इससे वो शख्स बदल नहीं जाएगा जिससे आपने शादी की है, कि अगर आप खुशी के ना होने का जिम्मेदार उसे ठहराते हैं। एक बार खुदा ने मुझसे कहा डेव पर अपनी खुशी की जिम्मेदारी डालना बंद कर। जी हाँ, शायद आज इसी बात से कोई रिहाई पा जाए। एक औरत ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस के बाद आई, और मैंने बहुत अरसे से इस बारे में तालीम नहीं दी थी, लेकिन वो आई और मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने उसे जिंदगी का लुत्फ उठाने की तरगीब दी। और मुझे लगता है ऐसे चंद लोग आज यहाँ भी हैं, क्योंकि मैं अपने पूरे दिल से ईमान रखती हूँ कि जो कलाम खुदा मुझे मुख्तलिफ जगहों पर सुनाने के लिए देता है वो सही कलाम है, सही वक्त और सही जगह है। और आज शाम यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी अशद जरूरत है। जैसा मैंने बताया कि मैं 50 के करीब थी इससे पहले कि मैं जानना शुरू करती कि खुदा वाकई चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाऊं। और मुझे याद है कि एक रात मैं काउच पर लेटी थी और कोई मूवी देखने वाली थी, और मैं सारा दिन काम काज पर रही, और मैं हमेशा से मेहनती हूं, और मैं पॉपकॉर्न वगैरह खा रही थी, और मुझे वहां लेटे लेटे ये एहसास हुआ, एक हल्की सी नदामत मेरे दिल में आई। क्या आपको कभी ये एहसास हुआ जब आपने आराम करने या लुत्फ उठाने की कोशिश की तो आपको लगा मुझे ये करना चाहिए या फिर मुझे ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए? और मैंने कहा खुदा मुझे क्यों हर बार इस कश्मकश से गुजरना पड़ता है? और उसने कहा क्योंकि तुझे नहीं लगता कि तुझे खुश होने का हक है। अब याद रहे, खुदा के फजल से हम हर बात का लुत्फ उठाना सीख सकते हैं जो भी हम जिंदगी में करें, और उसमें रोजमर्रा के मामूली काम भी शामिल हैं जो हमें करने होते हैं। चाहे आपके हालात कैसे भी हों, खुद को जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने की इजाजत दें आज ही।